نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبق نمبر 66 آیت نمبر 148 سے 162 سورة النساء چھٹے پارے کا یہ پہلا سبق ہے لیسن نمبر 66 آیت نمبر 148 to 162 سورة النساء آیتوں پہ جانے سے پہلے ہم سبق کا مین تھیم دیکھیں گے بہت اہم سبق ہے آج کے سبق میں پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی پر کوئی دوسرا زیادتی کرے تو وہ دوسرا کس حد تک اس سے بدلہ لے سکتا ہے دوسری چیز مہمان کے کیا حقوق ہیں اسلام اس کے بارے میں ہمیں کتنا گائیڈ کرتا ہے اگلی چیز اللہ اور رسول کے بیچ میں فرق کرنے والوں کی سزا کیا ہے اور کیا ان کا دین سلامت رہتا ہے پھر اس سے اگلی چیز آج کے سبق میں اہل کتاب کی وہ کیا خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کے منصب سے اتار کر امت مسلمہ کو اس چیز کا موقع دے دیا پھر اگلا آج کے سبق میں جو نقطہ سامنے آئے گا وہ آج کی ماڈرن بینکنگ اس کا نقطہ آغاز کیا تھا آج کے سبق میں آپ دیکھیں گے کہ اس وقت انسانیت جو سود کے نظام میں پھنسی ہوئی ہے آخر یہ شروع کیسے ہوا انہی آیتوں میں یہود کے ایک عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم عموماً بات کیا کرتے ہیں اور اسی طرح پھر آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ لوگ اسلام کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو ایک الگ مذہب قادیانیت میں کیسے چلے گئے یعنی یہاں وہ آیات آ رہی ہیں کہ جس میں کچھ ایسا انحراف آیا کہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ جس کو پھر بہت بڑا عقیدہ بنا لیا گیا آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے سبق کو شروع کرتے ہیں یہاں سے تھوڑا سا پارے کو بھی دیکھ لیتے ہیں پارے کی پہلی آیت جو ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی پکار کر کسی کی برائی کا ذکر کرے ہاں مگر صرف وہ شخص یہ کر سکتا ہے جس پر کہ ظلم کیا گیا یہ مطلب ہے اس آیت کا اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل اچھا نہیں لگتا کہ لوگ دوسروں کے ساتھ جو معاملہ کریں اس کو دوسروں کے بیچ میں اس طرح کھول دیا جائے کہ پرسنل بات زبان زد عام بن جائے پروپیگنڈا ہو جائے اور بات پیچھے جائیں پچھلی آیات میں ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ یہود کا قصہ مسلسل ہے ساتھ ہی نصارہ کا بھی شروع ہو گیا اور ہم نے آخری آیات میں دیکھا کہ یہود اور نصارہ گاہے بگاہے مسلمانوں پر اور اسلام پر کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہتے تھے یہ باتیں سن کر مسلمان کیا کریں جب ان کے اوپر الزامات لگیں جب لوگ ان کو ٹیررسٹ کہیں تو اس کے جواب میں ایک بندہ کیا کر سکتا ہے اس کے اندر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس کا تذکرہ لیکن اکثریت جو ان مفسرین کی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ آیت مہمان کے بارے میں ہے چند شان نزول لکھا دیتی ہوں امام مجاہد کہتے ہیں کہ لا یحب اللہ الا من ظلم سے مراد مہمان ہے جس کی مہمان نوازی اچھی نہ ہو وہ وہاں سے پلٹ کر اس کی برائی بیان کرتا تو اسے رخصت دی گئی یعنی یہ غیبت شمار نہیں ہوگی لیکن معاملہ واقعی ایسا ہو جیسا کہ کوئی بہتان نہ باندھے عربوں میں ہوتا کیا تھا یہ بات آپ کو مجھے تو بہت ہی عجیب لگے گی ہمارے کلچر میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے لوگ مہمان کے ساتھ برائی کریں اس کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا لیکن عربوں میں ہوتا کیا تھا کہ وہ بہت مہمان نواز تھے اور اس دور میں ہوٹلز اور باہر کے رہنے سہنے کے کھانے پینے کے انتظامات نہیں ہوتے تھے لوگ جب دوسرے شہر یا بستی میں جاتے تو بستی والوں کا فرض ہوتا تھا کہ جاننے یا انجانے لوگوں کو اپنے گھروں میں ٹھہرائیں ان کو کھانا کھلائیں ورنہ بھوکے رہ سکتے کیونکہ وہاں باہر کھانا نہیں بکتا تھا کچھ ایسے حالات ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کے کہا کرتے تھے یہ حدیث پڑھ کے سنا دیتی ہوں مسند احمد کی روایت ہے مقدام سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی کے ہاں مہمان بنتا ہے لیکن وہ حق کے ضیافت سے محروم رہتا ہے مثال ہے کہ مہمان رات کو آیا کہا اچھا سو جاؤ میرے گھر میں لیکن اس کو کھانا نہیں پوچھا یہ سوچ کے کہ اب کیوں پوچھوں یا سوچا کہ کھا لیا ہوگا اور وہ بھوکا سو گیا یہ ہے حق کے ضیافت تو ہر مسلمان پر اس کی مدد کرنا لازم ہے کہ اس کی ضیافت کا حق لے چاہے اس کی کھیتی سے یا اس کے مال میں سے یعنی جس نے مہمان کا حق نہ دیا اسے زبردستی بھی لے لیں साहबा ने कहा कि हम कभी कभी कहीं जाते हैं और लोग हमारी अच्छी ज़ियाफ़त नहीं करते, और क्या वापस आकर अगर हम ये कह दें कि उन्होंने हमारी अच्छी ज़ियाफ़त नहीं की तो क्या ये गुनाह होगा? तो कहते हैं कि उस पर रियायत उतरी थी कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सुई इल्ला मन ज़ुलिम, कि अल्लाह को पसंद तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई किसी की बुराइयां बयान करे, किसी के साथ कोई मामला हो, बिल्कुल पसंदीदा नहीं है। लेकिन हाँ, इल्ला मन जुलिम, तो मन जुलिम से मुराद हर वो शख्स है जिसका कोई हक ना दे, और सिर्फ उस उतनी सी बात को बयान करने के लिए जिससे हक तलफी दूर हो जाए तो इसकी इजाज़त है। अब इस आयत को सिर्फ शाने नजूल तक नहीं लेंगे, हम इसको ओवरऑल जनरल करके देखें तो हम इंसानों की जिस दुनिया में रहते हैं हम अकेले नहीं हैं, हमें बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ता है और मिलते जुलते ही रहना चाहिए, अकेला इंसान किसी काम का नहीं होता। अब जब इंसानों की दुनिया में हम निकलते हैं तो लोग मुख्तलिफ किस्म के हैं, मिजाज फ़र्क, हालात फ़र्क, तरबियत फ़र्क, तरजीहात फ़र्क, कोई पढ़ा लिखा कोई अनपढ़, कोई गांव से कोई शहर से, कोई वेस्टर्नाइज और कोई ईस्टर्नाइज, तो जब ऐसी चीज़ें आपस में जुड़ती हैं तो फिर उसके नतीजे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी बेशी रह ही जाती है। हद तक एक घर में रहते हुए शोहर और बीवी जो एक छत के नीचे रहते हैं, आप देखते हैं कि उसमें भी मिजाज में फ़र्क है, लेकिन जब आप एक छत के नीचे रह रहे हैं तो क्या करो, अल्लाह ताला कहते हैं ला युहिब्बुल्लाह, पहला लफ्ज़ ही देखे ला युहिब्बुल्लाह, अल्लाह डोंट वॉन्ट दिस, डोंट लाइक दिस, अल्लाह डिसलाइक्स। इस आयत के ऊपर हमने रब का पैगाम मेरे नाम में जब क्लास ली तो वो लेक्चर जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक दावा सीरीज में अल्लाह किनसे मोहब्बत करता है, आप अगर वह पेज खोलेंगे सीरीज वाला तो उस पर मौजूद है, मैं चाहूँगी कि उसका लिंक भी डाल दें आपके पेज पे, आप सुनिए। उसमें हमने डिसलाइक्स एंड लाइक्स ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला डिस्कस किए थे कि अल्लाह ताला किन चीज़ों किन इंसानों से प्यार करता है और किन से प्यार नहीं करता। अच्छा, अल्लाह किन से प्यार करता है ये कौन पूछेगा? अल्लाह से जो खुद अल्लाह से प्यार करता है। देखिए, जिससे हम मोहब्बत करते हैं ना, हम उससे कुछ नहीं चाहते एक चीज़ के सिवा कि वो भी मुझसे प्यार करे। सीधी सी बात है, आप सारे रिश्तों में इस ताल्लुक को महसूस करके देख लीजिए, माँ बच्चे से लेके शौहर बीवी से लेके दोस्तों में, हम कहते हैं बस मुझे आप अपना प्यार दे दें, प्यार होगा तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी। कभी आपने ये नहीं कहा अच्छा मैं आपको प्यार देती हूँ तो आप मुझे पैसे दे दें, मैं आपको प्यार देती हूँ तो आप मुझे सोने का सेट ले दें। सोने का सेट भी हम मोहब्बत के इजहार के साथ लेते हैं। तो जिन इंसानों के दिल में अल्लाह सुबहाना तआला की मोहब्बत होती है वो तो बहुत पूछते हैं कि मेरा रब किस चीज़ से प्यार करता है, अल्लाह को इस बात से प्यार है। अब ज़रा चंद चीज़ों को सिर्फ मोटा मोटा देख लेते हैं कि अल्लाह को किस चीज़ से प्यार है। अल्लाह को अपनी ज़ात से भी प्यार है, अल्लाह को अपने नबी से प्यार है, कुरान में इसके सारे दलाइल मौजूद हैं, अल्लाह को अपनी इस किताब से प्यार है, और सबसे बढ़ के अल्लाह को अपने बंदों से प्यार है। हदीस में आता है कि अल्लाह अपने एक बंदे से 70 से ज़्यादा माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो हम अल्लाह से प्यार, उसके रसूल से प्यार, उसकी किताब से प्यार और अल्लाह के बंदों से प्यार करें। और चीज़ों में जो सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह को लगती है वो जिहाद फी सबीलिल्लाह, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह को इतना प्यारा लगता है कि उसके घोड़ों की टापों पे अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल कर दी, वलादियाति दबखन फलमूरियाति कदखन फलमुगीराति सुबह, कि घोड़े जो अल्लाह के रास्तों में चलते हैं, जो गाड़ियाँ निकलती हैं उन पर अल्लाह को इतना प्यार आता है, अल्लाह को वो आंखें बड़ी प्यारी लगती हैं जो अल्लाह के घर का पहरा दें पूरी रात। अब वो सरहद का पहरा है या दीन की किसी जगह का पहरा है ये अल्लाह को पता है। अल्लाह को वो आंसू बड़े प्यारे लगते हैं जो अल्लाह के रास्ते में गिरते हैं, अल्लाह के खौफ से गिरते हैं। अल्लाह ताला को पसीने के कतरे बड़े प्यारे लगते हैं जो इंसान बहाता है अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह को कदमों पर मट्टी का पड़ना बड़ा प्यारा लगता है जो उसके रास्तों में आता है। अल्लाह ताला को अच्छा अखलाक बड़ा प्यारा लगता है। हम सब अपनी पसंद को अल्लाह की पसंद से मैच करके देख सकते हैं कि हमारा हाल कैसा है, क्या हकीकत में मेरी पसंद अल्लाह की पसंद से मिलती है, क्योंकि मैं अल्लाह से मुख्तलिफ पसंद वाली रह के जी नहीं सकती। मुख्तलिफ तरीके से अपनी ज़िंदगी को टटोल के देखिए, आज आप जाके अपनी अलमारी को खोलें, पूछिए अल्लाह इसमें से कितने कपड़े तुझे पसंद है जो मैं बाहर पहन के जाती हूँ, कितने कपड़े हैं जो मुझे तुझे बुरे लगते हैं नापसंद है जो मैं बाहर पहन के जाती हूँ, अंदर की बात मैं नहीं कर रही, लेकिन बाहर के कपड़े वो ही पहनने चाहिए जो अल्लाह को पसंद है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें शामिल कर लेते हैं जो हकीकत में अल्लाह को पसंद नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम भी अल्लाह ताला के नापसंदीदा लोगों में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह एक एक चीज पे, घर का एक एक कोना, एक एक कमरा जाके देख लीजिए हल्का फुल्का, कि मेरे रब को मेरे घर की क्या क्या चीजें पसंद है। दिल खोल के देख लीजिए मेरे दिल के कौन से जज्बे रब को पसंद है और कौन से जज्बे रब को पसंद नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब हम इसका एहतमाम करेंगे ना, तो हम केयरफुल हो जाएंगे, फिर हम सोचेंगे कि वाकई अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को रब का बनाना है। ये जो कुरान पढ़ने के बाद हमारी जिंदगी में चेंजेस आती है ना, ये इस चीज़ की आ रही होती है कि हम अपने आप को अल्लाह का पसंदीदा करते हैं, जिसको आप कहें फेवरेटीज ऑफ अल्लाह। इसके बरक्स आम जिंदगी में जब एक इंसान लोगों की दुनिया में जीता है ना, तो पीपल प्लीजर बन जाता है कि मुझे लोगों को खुश करना है। बस दफा आप देखिए, हम अच्छे अखलाक के नाम पे भी जो काम कर रहे होते हैं ना, वो हम लोगों के अंदर पसंदीदा बनने के लिए कर रहे होते हैं। हम कहते हैं लोग मुझसे खुश हों। बस दफा हम खिदमतें भी बड़ी करते हैं लोगों की, उनकी खातिर मदारत भी बड़ी करते हैं, उनके लिए कुर्बानियां भी बहुत देते हैं, और दिल को तसल्ली क्या दे रहे होते हैं बस ना, फिर लोगों का हक भी तो अदा करना है, फिर उनसे भी उनको भी तो खुश रखना है। तो नोट कर लीजिए, लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर दिया तो लोग भी कभी खुश नहीं होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लम से ये बात पूछी थी कि अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूँ कि सारे ही लोग मुझसे प्यार करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों का प्यारा हो जाऊँ, मैं क्या करूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम लोगों से बेनियाज हो जाओ, जितना घुले मिलेंगे, जितना लोगों के साथ उठे बैठेंगे, बदमजगियां पैदा होंगी, उतना लोग फिर आपके ऊपर तनकीद करेंगे। ये अलग बात है कि लोगों को आपका वक्त लेना बहुत अच्छा लगता है, खुश बहुत होते हैं, लेकिन बाद में नाराज क्या होंगी। अब यहाँ एक खास स्पेसिफिक चीज जो अल्लाह को पसंद नहीं, वो क्या है? ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सुई, जहर बिस्सू अल्लाह को पसंद नहीं है। यहाँ की आयत के साथ देखिए, जहर किसको कहते हैं? ऊंची आवाज को। पांच नमाजों में से तीन नमाजें जहरी नमाजें कहलाती हैं, फजर, मगरिब और ईशा, क्योंकि इन तीन नमाजों में पहली दो रकतों में इमाम साहब सूरत अल फातिहा और उसके बाद जो भी सूरत अदा की जाती है उसको ऊंची आवाज से पढ़ते हैं। जहरी नमाजें हैं, इसीलिए इनका खास तौर पे मस्जिद में जाकर एहतमाम करना चाहिए पढ़ने का, क्योंकि एक तो कुरान और एक नमाज की हालत में पढ़ा हुआ कुरान, ये तो फिर बहुत ही खूबसूरत बात हो जाती है। जहर यहाँ इससे मुराद क्या है? चर्चा करना, बातें करना, लो उसने मुझे ये कहा, ये कहा, बुरी बातें, बददुआइया बातें, इस तरह की बातें, इस तरह की, ये हो गया, वो हो गया, ये सब कुछ अल्लाह को कतन पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद? इसलिए कि इससे ताफुन फैलता है। यहाँ जरा जहन में लाइए कि जो बातें लोग हमारे साथ करते हैं और अच्छी नहीं होती, हमें पसंदीदा नहीं लगती, वो उनकी मिसाल कैसी है? ट्रैश। देखिए, हम में से किसी का दिल नहीं करता कि हमारे किचन में ट्रैश भरे, छिलके हों, गंदगी हो, लेकिन जो ही काम करेंगे ट्रैश बनता है, बनता है ना। हम खाना खाते हैं उसके बाद ट्रैश बनता है, बनता है, बनता है, बिल्कुल बनता है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब हमारे घर के अंदर ट्रैश होता है इस तरह का कि जो बस उसको फेंको, तो हम क्या कर रहे होते हैं उस वक्त? सारे घर में फैलाते हैं, लिफाफा खोल के छिलकों को और बदबूदार जो भी गंदगी है उसको खोल के क्या हम जाके पूरे ड्राइंग रूम के थ्रू उसको लेके जा रहे होते हैं? नहीं लेके जाते ना। जो काम हम घर के अंदर गंदगी कूड़े करकट के साथ करते हैं, यही काम करना है हमने लोगों की गलत बातों पे। ये मेरी और आपकी चॉइस है कि उन बातों को डंप करके खत्म कर दें, या फिर दूसरी सूरत अपने दिल को एक ट्रैश कैन बना लें। यहाँ एक्टिविटी आप बना लें, अभी आइडिया बन जाएगा, दिल बना लें और उसके अंदर डालते जाए गंदगी। उसने ये कहा, उसने ये सुना, उसने मुझे आंख से इशारा किया, उसने मुझे गोनी मारी, उसने मुझे ये कहा, वो किया, ये सारी बातें अब ये जमा हो रही हैं। क्या कीजिए? इसके साथ वही कीजिए जो के कूड़े के साथ करते हैं। मिट्टी पाओ, डंप कर दो, मट्टी में दबा दो, फौरन उसको दिल से निकाल कर किसी ऐसी जगह पे फेंक दो जहां वो किसी को नजर ना आए, बल्कि दिल बड़ा कर लो, किसी को उसका कानो कान खबर ना हो, आपका दिल साफ है। अच्छा, अब आपने नहीं किया, होगा क्या भला? देखिए, लोगों की बातें दिल में आती गई। पहले दिल बड़ा साफ था, नई डस्टबिन खरीद के लाए हैं, क्लीन खुशबू वाला लिफाफा भी लगा दिया अंदर। अब आहिस्ता आहिस्ता दिल में बातें आने लगी, एक छिलका ट्रैश का आया, किसी ने एक बात कही, दूसरे ने कि आप सब्र किया करा, अब एक वक्त आया कि आपका दिल भर गया। अब जिस दिन दिल भरा तो ऐसा ऐसा क्या होता है, जब ट्रैश कैन भर जाती है तो क्या होता है, बदबू आती है पहली बात है। दूसरी बात है कि जब आप ट्रैश फेंकते नहीं है साथ साथ तो ट्रैश भरता जाता है, ओवर डंप होता है। ट्रैश कैन में ट्रैश कब बाहर निकलता है, जब भर जाता है। अब दिल भी तो उसकी एक लिमिट है ना, और दिल भी जब छोटा हो, चार बातें सुन के रोने लग जाए, दिल बड़ा कोई नहीं है इतना कि चलो चलो गहराई में डालते ही जाओ। अब जब दिल छोटा है, अब भर गया, अब इमेजिनेशन में लाइन भर गया, ये चुगलियां ताने इल्जाम ये वो तुम ऐसी गालियां जो भी है, अब भर गया, अब क्या करेंगे, मिनल कौल, कौल बन जाता है। जब हमारे दिल में बातें रहती जाती है तो एक दिन जुबान पे आ जाती है, ये जो हम बिल आखिर बोल पड़ते हैं ना, जिसको कहते हैं फिर तो मैं फटी पड़ी, फिर तो मेरे से सबर थी, एक दिन तो फिर मैं भी फिर खूब बोली, क्या देखती हूँ कि आप कितना बोलेंगी, मुझे भी बोलना आता है। ये किसके साथ होता है जो बातों को दिल में रखता है, समझ क्या रहे होते हैं कि हम सबर कर रहे हैं, ये सबर नहीं है, लिख लें ये सबर नहीं है कि दूसरों की बातों को दिल में रखते ही जाना। सबर क्या है, साथ साथ उस ट्रैश को फेंकते जाए, ट्रैश को फेंकते जाए, होता है आएगा, गंदगी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई ये कहे कि अच्छा जी नहीं मुझे तो किसी की को बात कभी बुरी लगी नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई अच्छी है, ये तो गलत है, आएंगी तो सही बातें, ताने तो पड़ेंगे। या तो देखिए अब घर में ही नहीं है, घर में ना हो तो ट्रैश होता ही कोई नहीं, खाना नहीं पक रहा ट्रैश नहीं है, तो ये तो हम सबके साथ नहीं है ना कि सब मरमरा गए सब खत्म, हम दुनिया में अकेले बैठे हुए, ये तो नहीं है। तो इंसानों की दुनिया में आपका दिल इस्तेमाल तो होगा, करें क्या, मैं आपको एक प्रैक्टिकल अपनी आदत बता देती हूँ जो मैं आमतौर पर ट्रैश कहने से करती हूँ, शायद उससे किसी को फायदा हो जाए। आप देखिए कि हम घर में बहुत ज्यादा लोग नहीं होते ना, तो अमूमन ट्रैश कैन बड़े होते हैं, फुल बड़ा पैक होता है, अब मुझे पहले तो वो पसंद ही नहीं है, लेकिन बाज़ हालात ऐसे होते हैं कि होता है, अब अच्छा चले मीडियम साइज का भी ट्रैश कैन लगा लें, तो अब क्या होगा उस ट्रैश कैन का कि उसको भी भरने में 2 4 दिन तो लगे हैं। अब ट्रैश दो किस्म का होता है, एक है कागज़, हमारे पास ज़्यादा कागज़ों का ही होता है, पेपर हो गए, कागज़ हो गए, कोई ऐसी चीज़ है, कोई प्लास्टिक की चीज़ है, 4 6 10 दिन भी पड़ी रहे कोई बुरी नहीं, लेकिन आपने चाहे आलू दो ही छीले, छिलके तो हैं, तो क्या हुआ, अब वो दो ही आलू के छिलके भी अंदर पड़े रहे 2 4 दिन, अगर ट्रैश कैन नहीं भरा तो क्या। तो मैं क्या करती हूँ कि पूरे ट्रैश कैन जो मीडियम साइज़ के वो लगा के उसके ऊपर एक छोटा लिफाफा, जो हमारे ये यूज लिफाफे होते हैं मीडियम साइज़ के, उसको एक कोने में इस तरह से डाल देती हूँ कि जो चीज़ मुझे फील हो रही होती है कि ये स्मेल पैदा करेगी या ये ताफुन होगा, वो मैं उसमें फेंकती हूँ। हालांकि आजकल घरों में वो भी कैबिनेट ट्रैश कैन मौजूद हैं जिसमें अंदर ही पार्टीशंस हैं, जिस घरों में तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो तो डेली बेस पर यूज़ होंगे, लेकिन कम है तो वो छोटे में डाला, अब जो चीजें छिलका डाल दिया कुछ भी कचरा डाल दिया, और एंड ऑफ द डे जब पता चल गया अब खाना खा लिया अब खत्म हुआ तो उसी को डंप लगा के बाहर जाते हुए फेंक दिया, तो वो बाहर असल ट्रैश कैन कई दफा आपकी एक एक हफ्ता 10 10 दिन नहीं चेंज करने की जरूरत पड़ती। आप अपने दिलों के साथ एक एक्स्ट्रा छोटी सी लिफाफी लगा लें, आपने मुझे बात की मैंने माफ कर दिया, मैंने छोड़ दी, कहें उनको मैंने आपको माफ किया, दुखा तो था दिल लेकिन मैंने आपको माफ किया। यकीन करें ये मैंने एक बच्चे के साथ एक्सपीरियंस किया, मैं घर में थी, मेरे भाइयों के बच्चे होते हैं तो बच्चे लड़ते रहते हैं एक दूसरे की एज के, वो बच्चों की लड़ाई का क्या करना, आज लड़ रहे हैं कल वो हंस रहे होंगे, तो दो बच्चे एक एक भाई का एक एक था, हम उम्र लड़ते, पुप्पो 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 इसने मुझे ये मारा ये किया, वो मुकदमा लेके आया मेरे पास, और वो जो पीछे जिस पे इल्जाम लग रहे थे वो कहाँ चुप रहेगा। हाँ अब जब वो अपनी कह चुका था, अब उसका ख्याल था कि पुप्पो पूछेंगी उसको दूसरे को ये वो, तो मैंने जो भी बच्चा था मैंने उसे कहा कि बेटा आपको बड़े बनना है, बच्चों को बड़ा शौक होता है ना बड़ा होने का, मैं बड़ा बनूंगा, तो मैंने कहा आपको बड़ा बनना है, तो कहते हैं हाँ, तो मैंने कहा आप बड़ा बनना है तो आप इसको को जो मैंने तुम्हें माफ किया। जो बच्चे दूसरों को माफ कर देते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं, यकीन करें उस बच्चे ने, वो बच्चे का कद भी मेरे कद से बड़ा हो गया होगा, जिसको मैंने ये बात कही थी कभी, तो उसको मुंह करके कहता जो मैंने तुम्हें माफ किया, तो मैंने उसको कहा देखो तुम बड़े लगने लग गए हो, फौरन थोड़ी देर में हाथ में हाथ डाल के चले गए, तो बड़े बनना कि नहीं बनना, क्या आपके पास इतना वक्त है कि इस दिल को गंदगी से भर लें, कहाँ रब की याद, कहाँ मोहब्बत, कहाँ तवक्कुल, कहाँ शुक्र, कहाँ सब्र आएगा जिस दिल में हर वक्त ग्रजिस है। अपना दिल खोल के दूसरों को दिखाने के काबिल है, ये क्राइटेरिया है सफाई का। मेरी नजर में किसी की सफाई क्या होती है कि वो उसके अंदर की चीजों को भी खोल के देख ले तो उसको लगे कि ये साफ है। हम सब अपने ट्रैश कैन को देखें कि क्या हम अपने किचन के अंदर इतना ट्रैश तो नहीं भर लेते कि कोई आए तो ये धड़का लगा रहे कि कहीं वो हमारी ट्रैश कैन ना देख ले। लिए लिए ना फिरें, इसको फेंक दें। एक रात आपकी जिंदगी में ऐसी नहीं आनी चाहिए कि आप किसी की कोई बुराई दिल में लेके सोएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आज की रात आपका इंतकाल हो जाएगा और दिल में गंदगी लेके जाएंगे। ये खुशबू आएगी फरिश्तों को हमारे दिल और हमारी जुबान से। चलिए दिल को थोड़ा सा मिनल कॉल पे भरते हैं, जुबान पे बातें आती हैं। लोग कहते हैं क्या करूं, फिर मुंह पे कहना ही पड़ता है। किसकी जुबान पे बातें आएंगी कड़वी, जिसके दिल में? तो जिसने दिल का मामला बाहर ही खत्म कर दिया उसका क्या मामला होगा, जुबान पे आएगी नहीं। जुबान साफ रखनी है तो दिल साफ रखिए, और दिल साफ रखना है तो तौहीद बना लीजिए अल्लाह से ताल्लुक। कोई तकलीफ दे के इसने क्यों दी, जैसे मिसाल है कि मुझे कोई ताना दे, मिसाल देती हूँ सिर्फ, एक एग्जाम्पलरी, एक हस्बैंड वाइफ की बात करूँ कि हो सकता है एक हस्बैंड जो बीवी को डांटता है या नाजायज को बात कर दी या गाली दी, बीवी के दिल में आया दुखा, दिल तकलीफ हुई, तो क्या कहे, उसके सामने कह दे, कोई हर्ज की बात नहीं कि पता नहीं मेरा कौन सा गुनाह था कि अल्लाह ने आपके जरिए इस बात से मेरा दिल दुखा दिया, आपको ये कहने की तौफीक हुई, पता नहीं मेरा कौन सा गुनाह था। यानी अगले को फौरन याद दिला दें कि आपने जो बात की से दिल दुखा है, लेकिन मैं खुद को वमा उबर रही हूँ नफसी न नफस अल्लामारा तुम बिसुई, ये मेरा ही को गुना जो इस तरह आगे आ गया। कोई आपका दिल दुखाते ऐसे ही रह जाते, ताल्लुकात ऐसे होते हैं, मामलात होते हैं, दोस्तों में दिल बड़े दुख जाते हैं, फौरन उसी वक्त सोचें, उसको ही कह दें मेरा दिल दुखा है वैसे आपकी बात से। अच्छा लोग कहना कुछ नहीं, नहीं 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऊपर अच्छा मैं जाती हूँ, और घर जाके जो मियाँ के सामने पटारा फोड़ दिया या माँ के सामने जाके बुराइयाँ शुरू कर दी या किसी दोस्त को बताने शुरू हुए, बिल्कुल गलत किया। करना है तो किसको करें। अब चलते हैं मिल्ला मन जुलिम, मन जुलिम पे बात करेंगे, किस हद तक इजहार किया जा सकता है। जाहिर हम इंसान है, पत्थर तो नहीं है, जितना मर्जी दिल को साफ कर लें कुछ ना कुछ तो होगा। और हमारी एक उस्ताद थी, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, उन्होंने कहा कि देखो ऐसी मैंने कोई बात पूछी होगी किसी मौके पे कि कोई आपका दिल दुखाता है, रिश्तों में कभी कभी आ जाती है ना दिल में तलखियां, तो क्या करें, तो हंस के कहने लगी कि बाहर से चल के आए हो तो पाँव पे मिट्टी पड़ी थी, तो मैंने कहा वो तो पड़ती है, कहेंगे फिर क्या हुआ, मैंने कहा थोड़ी देर आगे जाते हैं तो उतर भी जाती है, कहती यही होता है, साथ रहते हुए दिल पे मिट्टी पड़ती है, सगे बहन भाइयों की भी बातों की पड़ती है, चलते जाइए उस जिंदगी के सफर में, जो आज आपसे बुरे हैं कल ठीक होंगे। डोंट प्रोलोंग द फाइट, लड़ाई को तूल ना दें। आप शौहर बीवी के मामले को तो रात के बाद पे जाने ही ना दें, सारा दिन लड़े आप सोए नहीं जब तक कि क्लैरिफिकेशन ना कर लें, या आप माफी मांगे या वो मांगे, या आप लाड देखें या वो आपके लाड देखें, या आप लेट डाउन करें या दूसरा लेट डाउन हो जाए, करके सोएं। आप आज जाके ये अच्छे मूड के वक्त पे बात कर लें, अच्छे मूड पे बात कर लें, क्या है आज से एक बात करते हैं कि हमने एक रात भी ऐसी नहीं गुजारनी इस घर में रहते हुए कि हम दोनों खामोश होके सो जाएं, लड़के सो जाएं। और अल्लाह जानता है कि ये बात जो मैं आपको कहती हूँ ये मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ, अल्लाह ताला कभी बुरा वक्त ना लाए, मैं कह सकती हूँ पिछले इतने साल की जिंदगी में एक रात ऐसी नहीं गुजरी होगी कि हम कभी एक दूसरे से नाराज सोए हों। वजह क्या, क्या लड़ाई नहीं होती या बुरी नहीं लगती बातें, सब कुछ होता है, हम सब इंसान हैं, लेकिन ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिसुल्ल मन ज़ुलिम कद्दरल्लाहु मा शा फअल इन्ना लिल्लाहि अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबति वाखलुफ ली खैरम मिन्हा। ये बातें पढ़िए जब आपका दिल दुखे किसी से, अल्लाह मुझे इस मुसीबत पे अजर दे, अल्लाह मेरे पर कर, जाए मैंने आपको माफ किया, बात को मजाक में कर दें, आपने मेरा दिल तोड़ा लेकिन मैंने आपको माफ किया, हंसी निकल जाएगी आपके शौहर की। आप क्या समझते हैं आप इंसानों के साथ लड़ झगड़ के अल्लाह के साथ अच्छे नहीं बन सकते, मुतमईन नहीं रह सकते, आप बात को ख़त्म कर दें, जिस बंदे से गलत फहमी हो गई है क्लैरिफिकेशन कर लें, कम्युनिकेशन कर लें, किसी ने बाहर से बात भेजी कि फलां आपकी सास आपके बारे में ये बात कर रही थी, आपकी नंद आपके बारे में क्या कर रही थी, सलाम कीजिए, फ़ोन कीजिए, बहन मैं आ जाऊँ, खाला मैं आ जाऊँ, फुफो मैं आ जाऊँ, चची मैं आ जाऊँ, हर रिश्ते में ये बात होती है, ददियाली रिश्तों में ज़्यादा होती हैं मुझे लगता है, या ससुराली में ज़्यादा होती हैं, फौरन जाएं घर में, जो घर में कोई बिस्किट केक चाय पड़ी है ना ले जाएं और रखें, और कहें चाय पीने आई हूँ, चले आप चाय बनाएं मैं बर्तन रखती हूँ, और उस चाय के दौरान बात कर लें, हाथ पकड़ लें, रो लें, गले लग जाएं, लेकिन आप वहां से टले ना जब तक कि आपका दिल उनसे साफ ना हो जाए। ये करिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन, कोई एग्जेजरेशन नहीं, कोई ज्यादती नहीं, कोई कमी नहीं, कोई बेशी नहीं। कभी अपनी सास की बात मियाँ से ना शेयर करें, वो आपका भी नहीं रहेगा। और माँ का ना रह के आपने क्या करना है? आपका तो वो बेटा नहीं बन सकता ना, आपको तो शौहर ही चाहिए। जो लड़कियां अपने शौहरों के साथ घर वालों की बुराइयां करती हैं, जुल्म करती हैं, उनकी अपनी इज्जत चली जाती है मियाँ के दिल से, कि ये तो मेरी माँ के खिलाफ बोल रही है, बहनों के बोल रही है, कल मियाँ जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात करेंगे तो उनको समझ आएगी ये क्या किया। और इसी तरह किसी बीवी को, किसी बहू को उसके मैके का ताना देना, तू तो है ही ऐसे लोगों की औलाद, तो क्यों लाए थे, वापस भेज दो। यानी आप सोचिए कि आप बात खुद सुनते हैं, आप जरूरत खुद देते हैं लोगों को। पहली गलत बात सुन के अगर आप चुपके बैठे रहे, अगली बातों की जरूरत आपने खुद दे दी। आप खुद जुल्म करने पे मजबूर करते हैं। हदीस में आता है कि जालिम और मजलूम दोनों की मदद करो। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, मजलूम की मदद तो मैं समझ आती है कि उसको निजात दिलवाएं, उसके लिए कुछ करें कराएं, जालिम की मदद कैसे करें? कहा उसको जुल्म से रोको, कि देखो मियाँ जो काम तुम कर रहे हो तुम आग में जा सकते हो। देखो बीवी का हक बड़ा होता है, देखो माँ का हक बड़ा होता है, तुम माँ की नाफरमानी कर रहे हो। देखो भाई बहनों में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इस तरह क्लियर कट बात कर दीजिए, अल्लाह ताला उसके ऊपर मदद करेगा। फिर एक और तरीकाकार क्या होता है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इसमें एक बड़ा खूबसूरत वाक्य आता है, वो सुना देती हूँ। हदीस में आता है कि एक शख्स था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत ही सताता है। होते हैं ना, और छोटे छोटे घर थे उस दौर में, कच्चे घर मिट्टी के। कहने का मेरा पड़ोसी बहुत तकलीफ देता है। एक आध दफा उसने कहा तो अल्लाह के नबी ने उसको कहा सब्र करो। एक दिन आया, कहने लगा वो समझ ही नहीं पा रहा। आपने कहा तुम ऐसा करो, अपने घर का सामान निकाल के बाहर गली में रख लो और पास बैठ जाओ, बस और कुछ नहीं कहना। खैर उसने ऐसे किया। अच्छा वो जब बाहर बैठा तो जाहिर है आपको पता है जो अरब का माशरा था, गलियों में से लोग गुजरते, अरे भाई सुनाओ क्या, अरे ये सामान क्यों बाहर रखा हुआ है? कहा बस मैं छोड़ रहा हूँ घर, हमसाया तंग करता है, बस इतनी बात, क्यों भाई बस ऐसे मजा। एक आया, दूसरा आया, बस उसने ये कहा नहीं भाई मैं छोड़ रहा हूँ, भाई क्या वजह, बस यहाँ कुछ मसला है, ऐसी बात कर दी। अब थोड़ी देर गुजरी, हर आने वाला उस बंदे के मुंह से कुछ नहीं सुन रहा लेकिन उसके रवैये को देख रहा है, तो बात फैल गई, होते होते उस पड़ोसी तक भी पहुंच गई कि जो उसको सताता था। फौरन आया, तौबा की, माफी मांगता हूँ, सामान अंदर रखो और मैं आज के बाद तुम्हें सताऊंगा नहीं। ये अबू दाऊद की रिवायत है किताबुल अदब की। कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम तो इतनी अदालतें पेश कर लेते हैं कि अल्लाह की बना,